اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد پھر اکھڑ جائے، اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو، اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ہائی لائٹ کریے گا. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. کیا کچھ ہے آپ کے میرے پاس؟ مال، اولاد، زیور، دولت، سب کچھ. اللہ کہتے ہیں تمہارے ہاتھوں میں اتنی بے برکتی ہے کہ جو کچھ ہے ختم ہو جائے گا، یا تو تم خود ہی خرچ کراؤ گے جا کے فضول خرچیوں میں، ایکسٹرا خرچ کر کے آؤ گے، یا چوری ہو جائے گا، یا گم ہو جائے گا، یا ٹوٹ جائے گا. سچ ہے کہ نہیں؟ ہاتھوں سے فون گرتے ہیں اور چکنا چور ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہم. تو کیوں نہ اس کو محفوظ ہاتھوں میں ڈالیں؟ کیونکہ اللہ کے پاس جو چیز چلی جاتی ہے وہ باقی بچتی ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکری آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سارا گوشت بانٹ دیا، دستی کا ٹکڑا، یعنی جو گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا وہ رکھ لیا. شام کو جب آپ آئے تو آپ نے کہا کہ عائشہ، گوشت کا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ سارا بٹ گیا، بس ایک گوشت کا ٹکڑا بچا لیا آپ کے لیے. سارا بٹ گیا، ایک بچ گیا. آپ نے کہا، نہیں عائشہ، ساری بکری بچ گئی سوائے اس گوشت کے ٹکڑے کے. یہ تھے وہ لوگ. ہم تو پہلے اپنا گھر بھرے، پہلے اپنا قربانیوں پہ دکھا کریں کیا کرتے ہیں. رانے بھی ہماری، دماغ بھی ہمارا، اور غریبوں کے چھچڑے اور قیمہ کٹا ہوا جو اجڑی ہیں وہ لے جائیں. اللہ ماشاءاللہ. تو اس آیت کو پھر پڑھے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اس کا ایک ہینڈ آؤٹ بناتے ہیں، اس کو لکھنے کے لیے دیں کسی کو، اس کا سٹیکر بنا کے اپنے گھر میں مختلف جگہوں پہ ڈال لیں. جس چیز میں دل اٹکا رہتا ہے نا ہر وقت، یا جو چیز نہیں ملی ابھی تک، اس کی تصویر پہ یہ لگا دیں. مل بھی گیا تو کیا فائدہ. کتنے بے جان کھلونوں سے ہم کھیلتے رہتے ہیں، چمچیاں دیکھ رہے ہیں، گن رہے ہیں، کبھی شاپنگ کرتے ہوئے سوچے. اور کبھی کبھی گزرنا پڑے ایسی جگہوں پہ، میں سوچتی ہوں کون اتنا فارغ ہے جو اتنی چیزوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزیں لے گا. یہ کھانے کی چمچی، یہ پینے کی چمچی، یہ بچے کی چمچی، یہ آلیوز نکالنے کی چمچی، یہ فلاں چمچی، بڑی چمچی، چھوٹی چمچی، اسپون فلاں، یہ ٹیبل اسپون. اور جس کو پتہ نہ ہو کہتے اس کا ٹکٹس ہی نہیں آتے. دیکھو ٹی اسپون کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور بڑی اسپون کے ساتھ چائے میں چمچہ پھیر رہے ہیں. بھائی ہوگا اس سے کیا؟ جیسے پروٹوکول کبھی دیکھے، جب مہمان آتے ہیں کتنے قسم کے برتن باہر نکل آتے ہیں، چھوٹے بڑے پلیٹیں، اور اپنے کھائے ہوئے میں دوبارہ نہیں کھاتے، اپنے پیے ہوئے میں دوبارہ پانی نہیں پیتے. لیکن اللہ کہتا ہے یہ سب چلا جائے گا. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. یہ کون سا صبر ہے؟ قنات. لکھ لیجئے، صبر کا جہاں ذکر ہے اس میں مختلف معنی ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں مل جائیں تو خوشی بھی مل جاتی ہے؟ لازمی ہے کہ جس کے پاس یہ سب کچھ ہے وہ خوش بھی ہو؟ لوگ اس کے باوجود دکھی، اتنے خوبصورت گھر ہوتے ہیں لیکن لوگ رو رہے ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، پریشان ہیں. اصل خوشی کس کی ہے؟ اگلی آیت، یہ آیت تدبر بھی ہوگی اور آخری آیت بھی انشاءاللہ. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. یہ ان آیتوں میں سے جو مجھے اٹریکٹ کی تھی اور میں اس کتاب کی طرف آئی تھی. میں نے اس آیت پہ شاید درس سننا تھا کسی کا بہت پہلے، حیاتن تھا یہ وہ. اللہ کہتے جو بھی عمل صالح کرے گا میں اس کی زندگی کو پاک کر دوں گا. کیا ہوتی ہے یات طیبہ؟ خرافات سے پاک، رسم و رواج سے پاک، آج اس کی سالگرہ، ادھر جانا ہے اس سے پاک، ادھر جانا ہے. ہر وقت ہم دنیا سے کھیلتے ہیں، تھک جاتے ہیں کئی دفعہ، لیکن لوگ ہم سے خوش نہیں ہوتے. اس کو خوش کر، ادھر جاؤ. ادھر شروع میں اچھا لگتا ہے ایک حد تک، پھر اس کے بعد دل بھرنے لگتا ہے. جب آپ اللہ کی طرف آتے ہیں آپ کی زندگی پاکیزہ، سوچے پاکیزہ. ہوم سویٹ ہوم کا اگر آپ نے کانسیپٹ لینا ہے نا، تو وہ مرد اور عورت، یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف، جو دونوں دین پہ ہوں، وہ گھر دنیا میں جنت کا گھر ہے. नबी सल्लम का घराना इसमें बेहतरीन मिसाल है। आपके घर में ना आइकिया का फर्नीचर था, ना बेड एंड बाथ के कुशन और गद्दियां थी, ना आपके घर में कोई बहुत कीमती बर्तन थे, लेकिन आप इतने खुश रहते थे अपने घर वालों में। आपको अपनी बीवियों से इंतहाई मोहब्बत थी। जब मस्ती से फारिग होते, दीन के कामों से फारिग होते, घर आ जाते, बीवी के साथ काम कर रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी बोल रहे हैं, कभी आपकी बीवियां एक दूसरे पे आटा मलती हैं और आप उनको देख के मुस्कुराते, कभी घर साफ करते, कभी बीवियों से बात करते। आपकी बीवियां कहती हैं, जब अल्लाह के नबी हमारे साथ होते हैं, हमें ऐसे लगता हमारे सिवा इनको किसी चीज से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन इतने में मौजिन की आवाज आती है, या अलसला है या अलफला, इस तरह हमारे पास से उठ के चले जाते जैसे मैं जानते भी नहीं। ये है होम स्वीट होम। फिर बीवी को यकीन है, मैं रोक नहीं सकती, जो मर्जी कर लो इन्होंने जाना है। हाँ, अगर बीवियों की मोहब्बत में नमाजें जमात तो छोड़िए, कजाई हो जाए तो हयाते तैयब नहीं है। सच्ची खुशी आजमाने के लिए अगर हम चंद महीने का टारगेट खुद को देना, ट्रायल बेस पे हम हर मुमकिन तरीके से सुन्नत तरीका फर्ज को पूरा करना और इसी तरह को ले, आपको ऐसी लज्जत मिलेगी, फिर आप उसको छोड़ेंगे नहीं। जस्ट टेक अ सैंपल, एक हफ्ते के लिए अपने बच्चों से मियाँ से कहें, जस्ट फॉर 1 वीक वी विल डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू सुन्ना। हम अपने घर को ऐसा बनाएंगे, ये करेंगे, अच्छे काम करेंगे, इसमें ये होगा, ये हमारा घर वाकई मुस्लिम घर बनेगा। करके देखिए, वो लज्जत बहुत खूबसूरत लगेगी और आखिरत की जजा उसके बाद अभी अखसनी माँ कानू या मलो, जो करते हैं वो नहीं उससे भी अच्छा। फैजा करात अल कुरान फस्तईज बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। और जब आप कुरान पढ़ने लगो तो शैतान रजीम से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। इससे इन लोगों पर तसल्लुत हासिल नहीं होता जो ईमान लाते और अपने रब पर भरोसा करते हैं। इसका जोर तो इन्हीं लोगों पर चलता है जो इसको अपना सरपरस्त बनाते और इसके बहकाने से शिर्क करते हैं। जैसे सूरत बकरा में हमने पढ़ा ना, ये है वो आयत जिसकी बुनियाद पे हम कुरान की तिलावत से पहले आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, और किसी काम से पहले नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान की तिलावत से पहले। भाई क्यों, हम कोई फिल्म देखने लगे हैं जो कह रहे हैं आउज़ु बिल्ला? नहीं, क्यों? क्योंकि जो ही कुरान खोलता है शैतान परेशान हो जाता है, उसको पता है अब ये मेरे हाथों से गया। तो आउज़ु बिल्ला शऊर से पढ़ा करें, जब भी यहाँ आ रहे होते हैं ना सुबह, पढ़ के आया करें। आप देखिए, यहाँ के भी शैतान आपको इंशाल्लाह नहीं बहका सकेगा। कुछ और चीजें भी जिनकी वजह से शैतान हमें नहीं बहकाता, 10 चीजें हैं, नोट कर लीजिए। आउज़ु बिल्ला कसरत से पढ़ने से, मुआवज़तैन यानी कुल औज़ु बिरब्बिन नास और फलक पढ़ने से शैतान भागता है, आयतुल कुर्सी की तिलावत से भागता है, सूरत बकरा की तिलावत से भागता है, इसकी आखिरी 2 आयतों से भागता है, सोने के अस्कार कर लेंगे तो शैतान भाग जाएगा, 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शयइन कदीर कहने पे, और ये बुक्स में मिल जाएगा आपको, घबराए नहीं। फिर जिक्र इलाही की कसरत हो वहां से शैतान भाग जाता है, फिर वुजू से शैतान भाग जाता है और नमाज से शैतान भागता है, फजूल खाने और बेकार गुफ्तगू से परहेज पर शैतान भाग जाता है। किन चीजों से शैतान हम पर आता है ये भी लिख ले, 4 चीजें, 4 रास्ते हैं जिनसे शैतान हमारे दिल पे काबू पाता है। नंबर 1, ज्यादा खाना, ओवर ईटिंग, ज्यादा नजरों का दौड़ाना, इधर देख उधर देख यानी गंदी नजरें, लुक्स, और ज्यादा सोशलाइज करना, मेल जोल, और ज्यादा बातें करना, बीइंग टॉकेटिव। अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे। फिर आगे फरमाया, वैसा बदलना आयतुल मकान आयतिन, जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत नाजिल करते हैं और अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो क्या नाजिल करे, तो ये लोग कहते हैं तुम ये कुरान खुद क्यों घटते हो? असल बात यह कि इनमें से अक्सर लोग हकीकत से नावाकिफ हैं। इनसे कहो, इसे तो रूहुल कुदुस ने ठीक ठीक मेरे रब की तरफ बतदरीज नाजिल किया ताकि ईमान लाने वालों के ईमान को पुख्ता करे और फरमाबरदारों को जिंदगी के मामलात में सीधी राह बताए और इनको फलाह और सआदत की खुशखबरी बख्शे। हमें मालूम है लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। अल्लाह के नबी से को जो बातें करते थे ना, अल्लाह उसकी जिक्र कर रहे हैं। क्या कहते थे? इस शख्स को एक आदमी सिखाता पढ़ाता है, हालांकि इनका इशारा जिस आदमी की तरफ है उसकी जुबान अजमी है और ये शख्स साफ अरबी जुबान बोलता है। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाही, हकीकत यह है कि जो लोग अल्लाह की आयत को नहीं मानते, अल्लाह कभी इनको सही बात तक पहुंचने की तौफीक ही नहीं देता। हाईलाइट करिए, दुआ कीजिए अल्लाह हमें आयतों का ईमान दे दे। और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक सजा है, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। झूठी बातें नबी नहीं घड़ता, बल्कि झूठ वो लोग घड़ रहे हैं जो अल्लाह की आयत को नहीं मानते, वही हकीकत में झूठे हैं। आयत बड़ी प्यारी है। बाज दफा इंसान मजबूर कर दिया जाता है, मक्की दौर में जब चारों तरफ इस तरह के हालात थे, तो कुछ लोगों को जब मजबूर कर दिया गया तो उन्होंने जान बचाने के लिए उनकी मनपसंद बात कह दी। अम्मार बिन जासिर के साथ ये मामला हुआ। उन्होंने काफिरों ने जबरदस्ती कहा कि जब तक तुम मोहम्मद सल्लम का इनकार नहीं करोगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब मारते थे क्या करते, इन्होंने कह दिया। वहां से अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी आज तो मैंने बहुत जुल्म किया। क्या किया? मैंने तुमको खुश करने के लिए वो कह दिया जो मुझे नहीं कहना था। का ये बताओ कि जब उनकी बात पर वो जुमले बोल रहे थे, तो उस वक्त तुम्हारे दिल की हालत क्या थी? कहा अल्लाह के नबी, दिल में बहुत ईमान था, आपकी मोहब्बत भी थी, ईमान भी थी। तो कहा अच्छा, फिर अगर कभी घेर लिए जाओ तो दोबारा भी यही कहना। इस पे ये आयत नाजिल होंगी। मेरे और आपके लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह ताला बंदे के दिल पे नजर रखता है, जुबान पे भी नजर रखता है। और जो बंदा अपने हालात का नाम लेकर अगर कभी कोई गलत काम करता है, तो उसका मामला उसके दिल पर रखा जाएगा कि उसका दिल किस किस्म का था। आयतों को पढ़िएगा। मन कफर बिल्लाहि मिन बाद ईमानिही इल्ला मन उक्रिहा व कल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान। जो शख्स ईमान लाने के बाद कुफर करे, फिर अगर वो मजबूर किया गया और दिल इसका ईमान पर मुतमइन हो, तब तो खैर है। मगर जिसने दिल की रजामंदी से कुफर को कबूल कर लिया और इस पर अल्लाह का गजब है, ऐसे सब लोगों के लिए बड़ा अजाब है। ये इसलिए कि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद किया। इसको हाईलाइट करें। ऐसे वक्त में अमूमन मजबूरी दुनिया ही होती है, और अल्लाह का कायदा है कि वो इन लोगों को राह निजात नहीं दिखाता जो इसकी नेमतों का कुफरान करें। ये वो लोग हैं जिनके दिलों और कानों और आंखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी। ये गफलत में डूब चुके हैं, जरूर है कि आखिरत में यही खसारे में रहेंगे। बखिलाफ इसके जिन लोगों का हाल ये है कि जब ईमान लाने की वजह से वो सताए गए, तो उन्होंने घर बार छोड़ दिए। हाईलाइट करें, खुद से पूछें, क्या मुझे कभी ईमान लाने की वजह से घर छोड़ना पड़ा? हिजरत की, क्या मुझे अल्लाह के लिए हिजरत करनी पड़ी? राहे खुदा में सख्तियां झीली, क्या मुझे अल्लाह के रास्तों में कभी सख्ती झीलनी पड़ी? और सब्र से काम लिया, क्या मैं अल्लाह के दीन के मामले में जो आजमाइशें मुझ पे आती हैं, उसका वावीला करती हूँ या उस पे सब्र से काम लेती हूँ? अल्लाह ताला में सब्र की तौफीक दे। अगर ये सब कर लिया, इतने काम कर लो, हाईलाइट कीजिएगा इस बात को, इतने काम करोगे तो इन्ना रब्बक मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, फिर तेरा रब इन सब बातों के बाद बख्शने वाला और मेहरबान है। हम क्या कहते हैं, मिन कबलीहा, लिख ले, बादिहा को कबलीहा बनाया हुआ है, इन सब से पहले ही अल्लाह माफ कर देगा। बड़े बड़े कबीरा गुनाह करते हैं और कहते हैं अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ कर देगा। भी कैसे कर देगा? इतने बड़े बड़े काम करने के बाद अल्लाह ने कहा, तो आप मैं उसके बगैर कैसे बच जाएंगे? अल्लाह ताला हमें नाफरमानियों से बचा ले। फिर कहा याद करो, अब क्यामत का दिन लाइए। आज हम दुनिया बनाने के लिए लोगों की और अपनी अल्लाह को नाराज करते हैं, क्यामत के दिन क्या होगा? यौमताति कुल्लु नफ्सिन तुजातिलु अन नफ्सिहा, उन सब का फैसला उस दिन होगा जबकि हर नफ्स अपने ही बचाव की फिक्र में लगा होगा, और हर एक को उसके अपने किए का बदला पूरा पूरा दिया जाएगा, और किसी पर जरा बराबर जुल्म न होने पाएगा। इमेजिन करें, अदालत लगी हुई और हर बंदा अपनी सफाई पेश करे, मुझे छोड़ दो, मेरी जान बचा लो। माँ बच्चों से जान छुड़ा रही होगी, बच्चे माँ बाप से बेजार होंगे, बीवियां शोहरों और शोहर बीवियों को मुजरिम बनाकर अपने आप को बचा रहे होंगे। आज कभी किसी को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज ना करें। क्यामत के दिन वो कभी आपसे खुश नहीं होंगे, बल्कि आपके अगली आयत में नाशुक्रियों की सजा बताई गई। बदरबल्लाहु मसलन क़रयतन कानत आमिना, अल्लाह एक बस्ती की मिसाल देता है, वो अमन और इत्मीनान की जिंदगी बसर कर रही थी और हर तरफ से इसको बफरागत रिस्क पहुंच रहा था। किसने अल्लाह की नेमतों का कुफरान शुरू कर दिया? क्या न कुफरान था, मक्का वालों की बात है। नबी सल्लम की कदर नहीं की, कुरान की कदर नहीं की, इस्लाम की कदर नहीं की। तब अल्लाह ने इसके रहने वालों को इनके करतूतों का ये मजा चखाया कि भूख और खौफ की मुसीबतें इन पर छा गईं। इनके पास इनकी अपनी कौम में से एक रसूल आया मगर उन्होंने इसको झुटला दिया। आखिरकार अजाब ने इनको आ लिया जबकि वो जालिम हो चुके थे। क्या आपको लगता है कि ये मक्का की कहानी है? दुख के साथ कहूंगी कि आपको अपने मुल्कों की कहानी नहीं लगती? क्या आपको ये रुसुल बेलाद की कहानी नहीं लगती? वो शहर जो आधी आधी रात तक रोशनियों में डूबे रहते थे, आज वहां क्या हालात हो गए? आज क्यों भूख है? आज क्यों अफलास है? आज क्यों बारिशें रुकी हुई हैं? ना शुक्रिया ना फरमानिया। आज उम्मत मुस्लिमा को इन आयतों पर गौर करने की जरूरत है। जब अल्लाह के नाम पे कोई चीज लें और उसका हक अदा ना करें तो अल्लाह वहां पे बेबरकती डाल देता है। हर काम में सोच ले, मुल्क भी है, इदारा भी है, इलाके भी हैं। कोई काम आपने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने आपको दिया और आपने उसका हक अदा ना किया, अल्लाह उसकी खैर से आपको महरूम कर देगा और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। इसीलिए अगली आयत में कबल का जा हम रसूलों मिन हम, फिर आखिरकार उनके पास एक रसूल आए मगर उन्होंने इसको झुटला दिया। आखिरकार अजाब ने इनको आ लिया जबकि वो जालिम हो चुके थे। हराम में पड़ गए रसूल को छोड़कर। फकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, बस है लोगो अल्लाह ने जो कुछ हलाल और पाक रिस्क तुमको बख्शा इसको खाओ और अल्लाह के एहसान का शुक्र अदा करो अगर तुम वाकई उसकी बंदगी करने वाले हो। अल्लाह ने जो कुछ तुम पर हराम किया वो है मुर्दार और खून और सुअर का गोश्त और वो जानवर जिन पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। कितनी दफा ये आयत आई है? तीसरी चौथी बार आई है। तो कितना वाज़े हुक्म है, फिर लोग फतवे पूछते हैं, मसले पूछते हैं। देखिए फतवा ना पूछे, तकवा पूछे। दो बातें होती हैं, एक होती है फतवे की, एक है तकवे की। फतवा तो आपको बहुत सारे लोग दे देंगे लेकिन तकवा आपको कभी ऐसी चीजें नहीं खाने देगा जिस पे अल्लाह ने बार बार कहा कि ये हराम है हराम है। और वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो, अलबत्ता भूख से मजबूर और बेकरार होकर अगर कोई इन चीजों को खा ले बगैर इसके कि वो कानून इलाही की खिलाफ वर्जी का ख्वाहिशमंद हो या हद जरूरत से तजावुज का मर्तकिब हो, तो यकीन अल्लाह ताला माफ करने वाला रहम करने वाला है। और ये जो तुम्हारी जुबानें झूठे अहकामात लगाया करती हैं कि ये चीज हलाल है और ये हराम, तो इस तरह के हुक्म लगाकर अल्लाह पर झूठ ना बांधो। जो लोग अल्लाह पर झूठ इफ्तरा बांधते वो हरगिज़ फलाह ना पाएंगे। दुनिया का ऐश चंद रोज है, आखिरकार इनके लिए दर्दनाक सजा है। यहूद की तबाही की वजह क्या थी आपको पता लग गया? दुनिया का माल, इसलिए फतवे लगाकर उन्होंने हलाल को हराम किया। सेम वही काम आज मुसलमान कर रहे हैं और फिर कहते क्या करे, फुलां भी तो कहते खा लो, फुलां कुछ कहता है, फुलां कुछ कहता है। अब अल्लाह की किताब से पूछे, दुनिया के 4 दिन के फायदों पर अल्लाह को नाराज किया तो दुनिया का भी फायदा नहीं मिलेगा। वो चीजें हमने खास तौर पर यहूदियों के लिए हराम की थी जिनका जिक्र इससे पहले हम तुमसे कर चुके। इन पर हमारा जुल्म ना था बल्कि इनका अपना ही जुल्म था जो वो अपने ऊपर कर रहे थे। अलबत्ता जिन लोगों ने जहालत की बिना पर बुरा अमल किया फिर तौबा करके अपने अमल की इसलाह कर ली, तो ऐसे लोगों के लिए आपका रब यकीनन गफूर रहीम है। क्या पता चला, हाईलाइट कर लें। अल्लज़ीन आमिलु सू, पहला अमल गुना हो गया। कैसे वो भी जहाला? ये जहालत कौन सी होती है? दो किस्म की है। एक जहालत होती है इल्म की कमी और एक होती ख्वाहिशात का गलबा। इंपॉर्टेंस नहीं बताती। आज उम्मत मुस्लिमा कौन सी ख्वाहिशात में? ख्वाहिशों के गलबे की। कल के दौर का इख्तलाफ क्या था? इल्म का इख्तलाफ था। आज के दौर का इख्तलाफ ख्वाहिशों का खिलाफ इख्तलाफ है। सूद जायज करना है, ख्वाहिश हो गई, जायज करार दे दो। गैर जबीहा हलाल करना है, ख्वाहिशाती है, जायज कर दो। ये पहन लो, वो खा लो, वो कर लो। बड़े बड़े गुनाहों को लोगों ने हलाल किया। और मुझे हैरत उस वक्त होती है कि जब दीन का नाम पे दीन समझने वालों के अपने कमाने में और उनके खाने में अगर नाफरमानी की चीजें हो और एहसास तक ना हो। याद रखिए यहूद में जब सूद आम हुआ था ना, चाहे वो इंटरेस्ट की सूरत में हो या इंश्योरेंस की सूरत में हो या किसी भी खूबसूरत स्लोगन की सूरत में हो, अल्लाह ताला ने उन पर शरीयत को मुश्किल कर दिया था। कौमें तबाह हो गईं जिस चीज से आज के मुसलमान और नाम निहाद मुसलमान को उसका एहसास नहीं है। कभी फला नहीं आएगी उम्मत के पौधे पे, कभी बहार नहीं आएगी जब तक सूद और इसके निजाम से हम नहीं निकलेंगे। तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। और आज आप देखिए वो लोग जिन चीजों में बेचारे फंसे, कोई खुशी उनकी जिंदगी में नहीं है। रंग बिरंगी बीमारियां लगती हैं ऐसी सूरतों में, ना जाते हुए भी इंसान परेशान है। अल्लाह से कहां तक लेंगे? देखिए आपको एक हाथ से इतना पैसा मिल भी जाए तो दूसरे हाथ से डॉक्टर को इतना बड़ा बिल देना पड़ जाए, तीसरे हाथ से पता चला गाड़ी को बम पड़ गया, 10,000 का बिल पड़ गया वो दे दिया, चौथी तरफ पता चला घर की साइकिल टूट गई, गाड़ी टूट गई, ये सब अल्लाह की तरफ से सजाएं होती हैं इस बात की, लो फिर ले लो जितना लेते हो, मैं अब तुम्हारा जाया कराता हूं। सीधे रहेंगे सीधा चलेगा, टेढ़े होंगे टेढ़ा होगा। लोग कहते हैं क्या करें, इतनी मुश्किल इतनी महंगाई है, किधर फंसे, तवक्कुल कीजिए। देखिए अब आज के दौर का मामला, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं कर सकती लेकिन मुझे करनी चाहिए, ये मेरा फर्ज बनता है। जहां मजबूर कर दिए गए वो आप जाने और अल्लाह जाने, लेकिन आप अपनी ख्वाहिशात से, जब आप अपनी पसंद के साथ कुछ ऐसी चॉइसेस लेते हैं, बीमार हो गए तो पे कोई और करेगा, हादसा हो गया तो पे कोई और करेगा, तो ये तवक्कुल की कमी है। मुसलमान को अपना नुकसान खुद भुगतना, इसमें गैम्बलिंग आती है, सट्टेबाजी है। आपने अभी किसी को $100 दिए और नुकसान आपका 150 का हो गया, 100 तो उस कंपनी ने आपको ठीक दिए, 50 कहां से आए, ये क्वेश्चन है। आप कहेंगे उसने दूसरों से लिए, ठीक है उसके लिए जायज है आपको देना, ऑफकोर्स अपने हाथ से तो कोई नहीं देगा, आपको कहां से मिले। कुरान बार बार कहता है ला ताकुल अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, लोगो एक दूसरे के माल ना हक ना खाओ। इसमें क्या कुछ है, इसकी डिटेल्स पढ़ के देखिए, फिर आप देखेंगे कितना गंभीर जुर्म है। लेकिन आज का मुसलमान इससे दूर है, इसकी वजह यह कि उसके पास जहालत है, ख्वाहिशों के गलबे वाली भी है और इस नौयत का पता ही नहीं है। याद रखिए ये वो चीजें हैं कि जिसने यहूद की बनी बनाई साख तबाह कर दी थी, अल्लाह ताला हमें भी महफूज कर दे। फिर पढ़े इस आयत को, इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूर रहीम, इस बादिहा को हाईलाइट करें और इसको 3 दफा खुद अपने हाथ से लिख लें कि ये सब करने के बाद तौबा करो इसलाह करो, फिर इसके बाद अल्लाह गफूर रहीम है। वाकया ये कि इब्राहिम अपनी जात से एक पूरी उम्मत है। मैं सोचती हूँ कि जहां कोई ऐसी बात आती है इब्राहिम का जिक्र क्यों आता है, ट्रस्ट अल्लाह पे, तवक्कुल। और इब्राहिम को थोड़ा दूर समझते हुए जरा अपने करीब चलिए, मुझे ये बताइए कि हमारे बाप दादा का गुजारा कैसे होता था, हमारे दादा के 10 बच्चे थे अगर तो कैसे जीते थे, बीमार नहीं होते थे बच्चे, अगर आपके नाना के 8 बच्चे थे तो कैसे पाया खाया पहना ओढ़ा, उनकी डॉक्टरियां उनकी दवाइयां उनकी गाड़ियों की कैसे कैसे चली। आज एक ऐसे विशेष सर्कल में फंसा दिया शैतान ने हमें कि सांस तक घुटे में, सच्ची खुशी चेहरे पे आती नहीं है। आप अपने बापों को देखें, यकीन करें सिर्फ आप अपने बाप और अपने शौहर में तकाबुल करें ना, आपके बाप भी बिजनेसमैन होंगे, आपके हस्बैंड भी आज बिजनेसमैन है, थके हारे साइकिल रिक्शे या आप समझ लें गाड़ियों पे या स्कूटरों पे आने के बावजूद चेहरों पे खुशी थी, टाइम देते थे, मसरूफ नहीं थे, खुश रहते थे, आपका ख्याल रखते थे। आज सिर्फ एक मसला बेचारे मर्दों का बिजनेस में, काम काम और काम, बिजी 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 बिजी। इस सर्कल से निकलने के लिए बहुत थ्रेशोल्ड चाहिए, बहुत पावर चाहिए, लेकिन आज मैं और आप कर लेंगे इंशाल्लाह, हमारी नस्लें आसान है। कम अज कम आज से ये नियत करें, अपने बच्चे जिनका भी कैरियर नहीं शुरू हुआ, मैंने उनको इस गंदी चीजों में नहीं डालना जिसमें फंसा हुआ आज पूरा मुआशरा, क्योंकि फिर वो बच्चे इंशाल्लाह आगे जाएंगे। और इसके बाद इब्राहिम की खूबियों को देखते जाइए, शाकिर लियानुमी ही, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाला था। एक दो उनकी खूबी रह गई तो पढ़ ही लेते हैं, इब्राहिम अपनी जात से एक पूरी उम्मत थे, अल्लाह के मती फरमान और यकसू, वो कभी मुशरिक ना थे, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले थे, अल्लाह ने इनको मुंतखब किया और सीधा रास्ता दिखाया। जरा नोट करते जाए, और दुनिया में भी इनको भलाई दी और आखिरत में भी यकीनन सालेहीन में से होगा। आज शैतान ने ये ख्याल डाल दिया कि दुनिया बनाओगे तो आखिरत बिगड़ जाएगी, और आखिरत बनानी है ना फिर दुनिया में रो लो। आज यही कहते हैं मौलवियों की बातें सुनो और दुनिया खराब कर लो। इब्राहिम की तो दुनिया भी बन गई आखिरत भी बन गई, और अल्लाह ने चुन भी लिया रास्ता भी दिखा दिया। अल्लाह ये सारी खूबियां हमें भी दे दे, एक एक पे दुआ करते हैं। चलिए अल्लाह हमें भी अपनी जात में उम्मत बना दे, अल्लाह हमें अपना मती फरमान बना दे, अल्लाह हमें फोकस्ड कर दे, अल्लाह हमें मुशरिक ना बनाना, अल्लाह तेरी नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बना दे, अल्लाह हमें भी मुंतखब कर ले, और अल्लाह हमें भी सीधा रास्ता दिखा दे, और अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई दे दे, और अल्लाह हमें आखिरत में सालेहीन में कर दे, और अल्लाह हमारी ये सारी दुआएं कबूल कर ले हम सब के हक में। और फिर हमने आपकी तरफ ये वही भेजी कि यकसू होकर इब्राहिम के तरीके पर चलो। हाईलाइट करिए इस आयत का क्या मकसद है, कि इब्राहिम जो थे वो तुम भी बनो, इसीलिए उनको भेजा रोल मॉडल बनाकर कि आप भी उसी तरीके पर चलें जिस पे इब्राहिम थे। हम कहते हैं इब्राहिम के तरीके पे हम कुर्बानी की ईद पे चलते हैं, हम उस दिन बकरा ज़िबा करते हैं, ख्वाहिशें नहीं ज़िबा करते, औलाद नहीं ज़िबा होती, दुनिया के फायदे ज़िबा नहीं होते। तो अल्लाह कहते हैं उनके तरीकों पे चलो, सिर्फ रिचुअल्स को ना अपनाओ, स्टाइल ऑफ लिविंग को भी देखो। रहा सब, तो वो तो हमने लोगों पर मुसल्लत किया था जिन्होंने इसके अहकाम में इख्तलाफ किया, और यकीन आप कर अब क्यामत के रोज इन लोगों की बातों का फैसला करेगा जिनमें वो इख्तलाफ करते रहे। अब आखिरी आयतें, बहुत खूबसूरत तरीके से दावत और तबलीग का तरीका सिखा दिया। क्या हाईलाइट कीजिए, इंशाल्लाह इसकी तफसीर आपको भेजेंगे। उदु इला सबीली रब्बी का बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, ए नबी अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत दो हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ, और लोगों से मुबाहसा करो ऐसे तरीके पर जो बेहतरीन हो। आपका रब ही बहुत ज्यादा जानता है कौन इसकी राह से भटका हुआ और कौन राह रास्त पे। यानी तुम लोगों को फतवे ना दो कि तुम बहके हुए हो, तुम गुमराह हो, काफिर हो, अल्लाह को पता है कौन किस हाल पे है। और अगर तुम लोग बदला ले लो तो बस इसी कदर बदला ले लिया करो जिस कदर तुम पर ज्यादती की गई हो, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो यकीनन ये सब्र करने वालों के हक में बेहतर है। ऐ नबी सब्र से काम किए जाओ, और तुम्हारा ये सब्र अल्लाह ही की तौफीक से है। इन लोगों की हरकतों पर रंज न करो और न इनकी चालबाजियों पर दिल तंग हो। अल्लाह इन लोगों के साथ है जो तकवा से काम लेते हैं और एहसान पर अमल करते हैं। क्या पता चला कि लोगों को दीन की दावत देनी हो, या बच्चों को दीन की दावत देनी हो, या घर वालों को, या शौहर को, या बीवी को, या रिश्तेदारों को, स्टेप्स हैं। सबसे पहले हिकमत, बर मौका दावत है। बच्चा भूखा और आप उसको नसीहतें कर रही हैं, वो गुनाह की मोहब्बत में चूर और आप उस वक्त उसको बातें सुना रहे, ये तरीका दुरुस्त नहीं होता। फिर उसके बाद मौइज़तिल हसना, हार्ट पेनिट्रेटिंग बात करें, दिल में उतरने वाली बात, दर्द वाली बात, जो दिल में उतर जाए, चीख चीख के घर न सर पे उठा ले। और उसके बाद अगर बात जरूरत पड़े झगड़े की, बहस की, तो जा दिल हम बिल्लती याक्सन, फिर बहसों में ना पड़ो बल्कि अच्छे तरीके से करो। तो याद रखिए, बहसों से कभी दीन नहीं फैलता। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमने इस पूरे बारे में जो सुना, जो पढ़ा, उसको हमारे लिए खैर का जरिया बनाए। जो जो बातें अमल में मुश्किल लग रही हैं, अल्लाह ताला उसको आसान कर दे, और जो जो चीज़ें उस पर अमल करने की पहली फुर्सत में अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। ये आखिरी चंद आयतों की तिलावत सुनते हैं, 110 से तिलावत सुनते हैं। सब बौसफिला पढ़े मिलके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا
يظلمون.
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يعملون.
جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ رکیں گے اور خلاف باتیں کر رہے ہوں گے.